द्रोणाचार्य के प्राणों से नहीं मरे, जो उन्होंने बीज को पान कर लिया, काली हर्द में जितना बीज था सब पी लिया, आग खा लिया नहीं मरे, और पहली एक छोटे से बाण से चुभ गया मर गए। ये सब भगवान का लीला प्रदर्शन है, इसके लिए माया जो में है अज्ञानी लोग उसमें मुग्ध हो जाते हैं, भगवान के लीला चित्र को नहीं समझ पाते, और भगवान के भक्त लोग लीलाओं को देखकर के प्रणाम करते हैं कि प्रभु आपकी ऐसी अगाध लीला है। इसलिए आप लोग जब सुना भागवत ऐसा मोहित मत होंगे, भगवान का कोई भी भक्त मरता नहीं है तो भगवान ही कैसे मर जाएंगे, उनको बाण लग जाएगा, ये बात ठीक नहीं। इसलिए जो भागवत को यदि मन से पढ़ेगा भगवान उसके हृदय में आ जाएंगे, और वो कभी भी माया के पास में नहीं आएगा, कभी भी नहीं मरेगा, ये नहीं तो भागवत झूठी हो जाएगी। भागवत झूठी नहीं, हमारी कौन कल्पनाएं झूठी हो सकती है, समाज के लोग झूठे हो सकते हैं, राजनीतिक के इत्यादि झूठे हो सकते हैं, भगवान उनके परिकर व्यास जी सुखदेव गोस्वामी जी झूठे नहीं हो सकते हैं। इसलिए विश्वास के साथ में भागवत का आप लोग पाठ करेंगे, भगवान की लीला कथाएं स्मरण करेंगे, जो सच्चे संत हैं झूठे नहीं। आजकल कलिकाल में अधिकांश झूठे संत लोग घूमते हैं, जो उनको पैसे की जरूरत है और कुछ चीज की जरूरत नहीं, संतों को पैसे की जरूरत नहीं होती, उनसे इनसे मतलब नहीं, उनको दाम से, प्रतिष्ठा से, शास्त्रिक लोभ से, लालच से जरूरत नहीं। वो चाहते हैं कि ये जो संसार में जीव भगवान को भूल करके घूम रहे हैं, इनका कल्याण कैसे हो। हमको डॉक्टर ने बतला दिया आप मत जाइए कहीं, अभी वृंदावन में बैठिए, तबीयत आपकी खराब है। मैंने कहे मरना तो एक दिन है, जरा हरी कथा कह करके, यदि कहते कहते यदि प्राण हमारे चले जाएंगे तो फिर इससे बढ़कर के आनंद क्या होगा। जब प्राण तन से निकले तब गोविंद का नाम मुख से निकले, इससे बड़ा अच्छा क्या है। इसलिए मृत्यु से कभी डरना मत, कभी नहीं। पर यदि एक आदमी किशोर बचपन से किशोर होता है तो उसको दुख होता है, जबकि किशोर से नौजवान होता है तो उसको दुख कष्ट होता है, नहीं होता है। तो फिर यदि हमारा शरीर पुराना हुआ है इसको बदल करके फिर नया मिल रहा है तो उसमें दुख की क्या बात है। इसलिए डरो मत मृत्यु से, डरना कौन डरता है, जो पापी होता है, जिन्होंने भगवान का भजन किया है, भगवान का नाम सब समय स्मरण कर रहे हैं, भगवान की लीला कथाओं को सुनता है, गले में तुलसी है, और जिसको गंगा जल और तुलसी या जमुना जल मिल गया, भगवान का नाम कानों में आ गया, वो महासौभाग्यवान है, वो सुरत वैकुंठ उठा गया। इसलिए भागवत की पोथी घर में रखना, गीता की पोथी घर में रखना, कभी भूले भटके भी उसे देख लेना, बड़ी श्रद्धा के साथ में देख। घर में तुलसी का बिरवा हो उसको रोज प्रणाम करना, उसमें पानी देना, बहुत उसका बड़ा भारी फल है। नास्तिक लोग कहते हैं कि ये सब बेकार की चीज है जिसको उपलब्धि नहीं है, किंतु हमारे ऋषि मुनि, हमारे शास्त्र अभिनेता, हमारे कृष्ण राम ये सब कहा गए। सुप्र सिद्धांत यह है पुरगारी भजिए राम सब काज विचारी, सब कामों को भी छोड़कर भगवान का। यदि आपने भजन कर लिया तो आपका जीवन सफल हो गया, और पैसा बटोर लिया केवल प्रतिष्ठा, तो मरते समय देखेंगे हाय 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 ये पैसा छोड़ करके जा रहा हूँ, तो इसको साथ में वो माया आपको जाकर के फिर सांप का जन्म देगी। एक कथा छोड़ी लघु चीज छुड़ा दूं, एक कोई व्यक्ति था, उसका नाम था कैलाश, बहुत रुपया कमाया, बूढ़ा हो गया, नारद जी आए, बहुत तुमने रुपया पैसा कमाया, तुम्हारे बहुत से लड़के उड़के हो गए हैं, अब घर भी बना लिया है, बड़ा शानदार महल सब कुछ बना दिया, अब तू भगवान का भजन कर। उसने बोला जैसे देखिए मैं तो भजन अभी से आरंभ कर देता आपके कहने से, किंतु हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, वो थोड़ा सा बड़े हो जाए ना फिर मैं उनकी शादी कर दूं और एक नाती का मुख देख लूं फिर मैं चलूंगा। अच्छा तू अभी नहीं चलेगा? ना अभी अभी मुझे फुर्सत नहीं है, अब थोड़ा सा ये बड़े होते हैं। कुछ दिनों के बाद में आया, पूछा कि भाई कैलाश कहाँ गए? अरे कैलाश तो 2-3 वर्ष हो गया, वो मर गए। अच्छा मर गए, ये कहीं दूसरी जगह नहीं गया होगा, यहीं पर कहीं होगा। देखा क्या एक बैल है, अरे यही तो कैलाश बैल होकर के इसके घर में आया है। कहा तुम अब भजन करेगा, अरे हमारे बच्चे अभी नाच अभी छोटे छोटे हैं, अभी ना समझ हैं, मैं अभी इनके घर में हूँ, गाड़ी में चलता हूँ, बैलगाड़ी चलाता हूँ, हल चलाता हूँ और सब काम करता हूँ, नहीं तो ये बेचारे कुछ नहीं कर सकेंगे, अभी जरा और थोड़ा सा बड़े हो जाएं। नाती हो गया है, अब एक इसका नाती का एक लड़का देख लूँ मुख, बस बड़ा सुखी हो जाऊँगा चलूँगा। अच्छा ठीक है। फिर कुछ दिनों के बाद मैं आया, भाई वो बैल कहाँ गया? तो बैल तो मर गया, मर गया कहीं नहीं गया होगा, जरूर उसकी आसक्ति घर में थी, घर में बड़ी आसक्ति थी। उसने देखा एक कुत्ता है दरवाजे पर बैठा। अरे कैलाश तू यहाँ पर कुत्ता होकर के बैठा है? हाँ बाबा मैं क्या करूँ, रात में हमारे नाती वोती सो जाते हैं, कोई चोर ले जाएगा, इसलिए चारों तरफ रात भर पहरा देता हूँ। भर पहरा देता है? अरे अब चलेगा भजन करेगा? थोड़ा सा और बड़ा होने दीजिए, जरा समझदार बन जाएंगे ना, मैं चल पड़ूंगा, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा मैं और थोड़ी देर प्रतीक्षा करता हूँ, किंतु इस बार जब आऊँगा तो जरूर मैं तुम्हें भजन करा कर ले जाऊँगा। अच्छा बाबा उस समय हम देख लें, अभी तो हमको छोड़ो। चला कुछ दिन के बाद मैं फिर आया, भाई वो कुत्ता कहाँ है? तो कुत्ता तो मर गया है, कितना दिन हो गए? तो हो गया करीब एक दो महीने हो गए। अच्छा वो कहीं नहीं गया होगा, यही नहीं होगा, उन्होंने जो दृष्टि लगाया देखा जी तो ये सांप बना हुआ है, जहाँ पर कि पैसा रखता था वहीं पर गडरूरी मारे वहीं पर बैठा हुआ है। मैं कहा जे अरे कैलाश तू चलेगा अभी? अरे बाबा इनको अभी होश नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूँ तो दूसरे चोरी चोर करके ले जाएंगे, फिर ये लोग खाएंगे क्या? अच्छा अभी देरी है तुम्हारी, अच्छा तो मैं तुम्हारी अब व्यवस्था करता हूँ, लड़कों से जा करके तुम्हारे घर में सर्प बैठा है, जिस तक किसी को डस लेगा इसको जल्दी से मार करके भगाओ, जान से मत मारना, किंतु इसको ऐसा करना धमरा रखना। ये अच्छी बात है, बच्चों ने देखा अरे इसके घर में तो बिस्तर सांप बैठा हुआ है और ऐसे कर रहा है, गांव वालों को बुला लाए, लठिया और पैनी जो होती है ना बल्लभ और क्या क्या चीजें ले आए, घर में धुआं दिया, धुआं देने से तो बेचारा एकदम घबरा गया, अब इधर सर निकलने लगा, उन्होंने बल्लभ से छेद करके उसे मारा तो नहीं किंतु अधमारा कर दिया, उसकी एक जगह ऐसे जोर से मारा जो टूट गया, एक जगह टूटने पर बाद में वो उठ नहीं सकता, काजे इसको जंगल में फेंका तो जंगल में फेंका है, जलाना मत। इसके बाद में पीछे से नारद जी गए, कैलाश अब तो तेरी कमर टूट गई ना, अब चलेगा? जिनके लिए ये धन कमाया, जिनके लिए रक्षा की, जिसके लिए तू बैल हुआ, जिसके लिए सांप और कुत्ते तक हुए, आज उन लोगों ने तुम्हारी सब कर्म कर दी, इन्होंने तेरी टांग तोड़ दी, तेरी कमर तोड़ दी, अब क्या करेगा, अब चलेगा? कहा है बाबा मुझको पहले चलना चाहिए था, मैं नहीं गया, अब नहीं रहूंगा, अब हम लोगों ने हमारी ये दुर्दशा से इन लोगों ने कर दी, अब ये आप कृपा कीजिए कि मैं चलूँ। अच्छा ठीक है, बस पानी उठाया उसके ऊपर में छिड़क दिया, उसमें से दिव्य प्रयास की आत्मा ने की और उनके साथ ही बने। इस चीज को समझो, समझो अच्छी तरह से, तुम्हारे लड़के ही कमर तुम्हारी रीढ़ तोड़ेंगे, कमर तोड़ देंगे और घर से निकाल देंगे, बूढ़ा अब खांसता है नींद नहीं आती हमारी बीवी को, यहाँ से निकलो, और बहू कह दिया है तू खांसने के लिए आया है, हमारे बच्चे को नींद नहीं आती है, अच्छा ठीक है, उसके पीठ पर झाड़ू से साफ करेगी, जो घर में झाड़ू दिया जाता है उसके पीठ को साफ करेगी। अच्छा अच्छा भाई क्या तो भी नहीं जाना चाहता, इसलिए ऐसा मत बनो, भगवान का भजन करो, समय से पहले ठीक हो जाओ, भगवान के लिए दूत आए विष्णु के दूत और तुम्हें वैकुंठ में ले जाए, भगवान की कथाओं को प्रेम से सुनो, अपना जीवन शासन करो। आज हम लोगों का भागवत यहाँ पर समाप्त हुआ, अभी आरती होगी, कल हम लोग 9 बजे से पहले 8 बजे यहाँ पर जैसे समय पर आते हैं आएंगे, और थोड़ा सा यहाँ पर भागवत का महात्म हम लोग वर्णन करेंगे, और महत्व वर्णन करके हम लोग भागवत को अपने जैसे ले आए थे कीर्तन के साथ, वैसे अपने सिर पर प्रोसेशन के साथ में इनके घर पर पधराएंगे साधु संत लोग, और वहाँ पर पूर्णाहुति होगी यज्ञ की स्वाहा स्वाहा, और उसमें डाल करके फिर हम लोग वहाँ पर जो भगवान का प्रसाद होगा प्रसाद लेकर के सबको हम लोग वितरण करेंगे, और हमारी ये पूर्णाहुति। आप लोग उसमें कल अंतिम दिन में जरूर आप लोग भाग लेंगे। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर भागवत की पूजा पहले करके उनका महापूजन, आप लोग सभी लोग घर से पुष्प लाएंगे और हम लोग उन पर अर्पित करेंगे अपने, वो पुष्प नहीं, पुष्प जैसा कोमल हृदय, मीठा सुगंधित हृदय, उसको कृष्ण ग्रहण करते हैं, वो हम भागवत पर देंगे। महामंत्र
चंद्राय राधिकायै सदा कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमो महाप्रसन्नाय कृष्ण प्रेम कृष्णाय कृष्ण यं प्रव्रजन् समनुते द्वैतायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेति सर्वभूतैर्यम्। जब कृष्णचंद्र जी इस पृथ्वी को छोड़कर गोलोक वृंदावन में चले गए, अर्जुन लौट गए हस्तिनापुर में, वो लोग भी उत्तराखंड में चले गए, परीक्षित को राज्य दे दिया। उस समय परीक्षित महाराज जी हस्तिनापुर से लौटकर मथुरा में आए और कृष्ण के पुत्र प्रपौत्र वज्रनाभ को मथुरा का राजा बनाया। उस समय मथुरा शून्य स्थान में पड़ी थी। उस समय में चारों तरफ जंगल हो गया, मथुरा पूरी नगरी भी नहीं रही और द्वादश वन जो थे, जो कृष्ण के नंदगांव बरसाना राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन वृंदावन सा जंगल हो गया। उस समय में परीक्षित महाराज जी आए और अपने वहां से हजारों ब्राह्मण परिवारों को ले आए, वहां से बनियों को ले आया, दूसरे दूसरे जातियों के लोगों को लेकर के बसाया और तब मथुरा पूरी नगरी बनी। उस समय में परीक्षित महाराज जी ने शांडिल्य ऋषि को बुलाया और बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुलाया और बोले कि जहाँ जहाँ कृष्ण की लीलाएं हुई थी वहाँ पर कुछ चिन्ह बनाए जाए। वृंदावन में उन स्थानों का पता लगाया जाए कि कहाँ पर कृष्ण का रास हुआ था, बंसीवट कहाँ था, केसी घाट कहाँ था, कहाँ पर काली हरद था, कहाँ पर राधा कुंड और श्याम कुंड था, कहाँ पर और सबर स्थल थे। वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनाया गया, गोपीनाथ और मदन मोहन सिंह विग्रहों की स्थापना की गई, गोपेश्वर महादेव की स्थापना की गई, बंसीपट को स्थान को जरा अच्छी तरह से बना दिया गया, मथुरा में केशव जी का मंदिर बना, केशव देव का, गोवर्धन में हरिदेव जी का जो कि गोवर्धन पर्वत को उठाया था उनका विग्रह स्थापन कराया। इस तरह से कामेश्वर महादेव कामेवन में, वृंदावन में गोपेश्वर महादेव, मथुरा में भूतेश्वर गोकर्णेश्वर इत्यादि महादेवों की स्थापना की गई और जहाँ जहाँ वन थे वहाँ पर सरोवर, कहीं कहीं पर मंदिर, इस तरह से सब कृष्ण की लीला स्थलियों को प्रकाश किया। प्रकाश करने के बाद में
कृष्ण की और रानियां जो थी वो भी द्वारका से वहां पर पहुंच गईं। सब रानियों को उन्होंने लिए और बड़े बड़े ऋषियों को बुलाया और वहां से वो लोग गोवर्धन पहुंचे, गोवर्धन की परिक्रमा की और परिक्रमा करके उद्धव कुंड नाम का एक स्थान है जहाँ पर उद्धव जी घास बने हुए हैं गोपियों की चरण धूलि पाने के लिए। आशा महो चरण रेण दुषाम हम, उन्होंने प्रार्थना की थी जो गोपियां कृष्ण की सर्वोत्तम सेवा करती हैं उनका हमें दर्शन हो, उनके चरण की धूलि की हम वंदना कर सकें, एक भी धूलि की तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए मैं घाट पन करके रहना चाहता हूँ। तो वहीं पर गिरिराज गोवर्धन में जहाँ वो घाट बने थे कुसुम सरोवर के पास में, वहीं पर ये लोग सब पहुँचे, परीक्षित महाराज जी और वज्रनाभ जी और उनकी माताएं और सब लोग वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर पहुँच करके उन्होंने कीर्तन करना आरम्भ किया। कीर्तन करते ही उद्धव जी घास जो बने हुए थे वो उद्धव जी बन करके वहाँ पर प्रकट होकर के उस कीर्तन में नाचने लगे। इतने में लोगों ने देखा कि अर्जुन मृदंग बजाने लग गए, देवता लोग सब वहाँ पर उपस्थित हो गए और सभी लोग मिल करके कीर्तन करने लगे। कृष्ण की जितनी रानियाँ हैं थी वो भी उपस्थित हो गईं और सब रानियाँ भी वहाँ पर आ गईं। और इसके बाद में देखा कि राधा कृष्ण अपने परिकर के साथ में ललिता विशाखा चित्रा चंपकलता और सब लोगों के साथ में वहाँ पर उपस्थित होकर के सभी लोग रास जैसा कीर्तन करने लगे। सब लोग उनको प्रत्यक्ष देखा। उद्धव जी तुम्हारे आनंद के फूले नहीं समाते, वो नृत्य करते 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 विधोर हो गए। थोड़ी देर तक ऐसा प्रसंग रहा, कृष्ण को साक्षात सब लोगों ने दर्शन किए, गोपियों को दर्शन किए और थोड़ी देर के बाद में धीरे धीरे कीर्तन समाप्त यही हुआ तो ये दृश्य भी गायब हो गया। तो ये सब हुआ था, उसको कहते हैं उद्धव कुंड, कुसुम सरोवर के पास में गोवर्धन की परिक्रमा के रास्ते में पड़ता है। और इसके बाद में सब नित्य लीला में प्रवेश कर गए। भागवत का फल यह है, श्रवण करने का फल, यदि भक्ति प्रेमा भक्ति होगी तो कृष्ण जरूर राधा जी के साथ में दर्शन देंगे, फिर जन्म नहीं होगा, यही भागवत का उत्तम फल है। आप लोग यदि धन धान्य की लालसा करेंगे तो धन धान तो मिल जाएगा, स्त्री पुत्र परिवार पति सब मिल जाएंगे, किंतु ये भागवत का फल नहीं है, इसे बंधन होता है। बंधन में मत पड़िए, राधा कृष्ण की एकांतिक भजन कीजिए। देवताओं का भजन करेंगे तो रुपया पैसा धन दौलत ये दे देंगे और उसमें आप बंधन में जकड़ जाएंगे, फिर निकलने का रास्ता नहीं होगा, 99 का फेर लग जाएगा। इसलिए भागवत का एक ही फल है, कृष्ण के चरणों में प्रेम हो, राधा जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही एकांतिक प्रार्थना हम लोगों को करनी चाहिए, इससे बढ़कर के और कोई प्रार्थना नहीं है। उद्धव जी या सुखदेव गोस्वामी जी, सुखदेव गोस्वामी नंगे रहते हैं, कोई वस्त्र नहीं, कपड़ा नहीं, कुछ नहीं, भागवत पाठ किया तो कुछ मांगा उन्होंने श्रोताओं से, न श्रोताओं को उन्होंने कृष्ण प्रेम दिया। भगवान का कथा जानने वाला, भगवान का भजन करने वाला संसार का कोई भी पदार्थ नहीं चाहता, चाहता कि राधा जी के चरणों में हमें प्रेम हो जाए। श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेर हास मुरली, हे श्याम सुंदर यदि आप हम पर प्रसन्न हैं, हमने सुना है ये भागवत और कुछ नहीं कृष्ण ही है, क्या है, समाधि देवम करुणा निधानम समालवरणम सुहितावतारम अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवत। ये भागवत कृष्ण का स्वरूप है। मनुष्यों को 10-12 अंग होते हैं, श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद ही उनके अंग हैं। श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद उनका हृदय है। इस तरह से वो समस्त स्कंदों को बतला है कि उनका कौन कौन सा अंग क्या क्या है। इस तरह से श्रीमद्भागवत कृष्ण है, इसलिए कृष्ण प्रसन्न हम लोगों पर हो, राधा जी की सेवा करने के लिए हम उनकी दासी उनकी सहेली बन जाए, इससे बढ़कर के और कोई उत्तम वर नहीं हो सकता है। तो जो लोग प्रार्थना करेंगे कृष्ण या श्रीमद्भागवत उसको वही देंगे, और नीचे का वर मत मांगना, देने से भी मत लेना, बस यही भागवत का फल है कि एक राधा कृष्ण में चित्त लग जाए और कुछ में चित्त न। अभी हम लोग श्रीमद् भागवत की आरती पूजा करेंगे, उनके चरणों में पुष्प देंगे। आप लोग यहाँ से पुष्प ले लेंगे, एक भाई थाला में पुष्प सजा दो और उसमें से एक एक पुष्प ले करके और उनके भागवत के चरणों में देना। अनिवेदित पुष्प हो, निवेदन किया हुआ पुष्प नहीं, अनिवेदित पुष्प हो, और उनको चरणों में हम लोग दे करके और उनसे प्रार्थना करेंगे। पहले चलिए हम लोग कीर्तन करते हुए आरती करेंगे, आरती करने के बाद में परिक्रमा करेंगे और फिर अपने अपने हाथों में लेकर के उनको पुष्पांजलि देंगे। चलो आरती करें। एक थाले में पुष्प लेकर के रख दो। ये सब जो चीजें हैं, ग्रेजुएशन इत्यादि है, ये भी शिक्षा है, किंतु एक उच्च है, एक उच्चतर है, एक उच्चतम है, तीनों में तारतम्य है। मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान कौन है, ये जो ज्ञान है ये उच्च ज्ञान दूसरे अध्याय में उन्होंने बताया। और ये शरीर पुराना होगा, इसको छोड़ना होगा, और आत्मा को कोई मार नहीं सकता, इसलिए अर्जुन तुम किसी को नहीं मार सकता, ये अजर अमर निश्चर शाश्वत सनातन, ये गुह्य ज्ञान। गुह्यतर ज्ञान परमात्मा का ज्ञान हमारे हृदय में है, जैसे अर्जुन तिष्ठति सामनं सर्वभूतानि जंतृणां पाया, वो भी भगवान का अंश परमात्मा है, क्योंकि ब्रह्म और परमात्मा का मैं मूल हूँ।
में परमम बजा। सबसे तुमको गुण बतला रहा हूँ, एक चीज को समझो, ज्ञानियों से बड़े योगी हैं, तपस्वी से योगी बड़े हैं, कर्मी से बड़े योगी योगी हैं। इसलिए तुम योगी बनो। कैसा योगी? योगिनां सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मा। समस्त योगियों में वो योगी श्रेष्ठ है जो अंतर आत्मा से मुझको भजन करता है, ये जानता है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा सबका आदि है और मेरा शास्त्र। इसलिए जब तक कर्म अधिकार है कर्म करो, किंतु अपने लिए मत कर, भगवान के लिए कर, यज्ञार्थ। नहीं तो कर्म बंधन हो जाएगा, तुमको जन्म मरण में चक्र में आना पड़ेगा। और ज्ञानी बनो तो कैसा? बहुना जन्म ज्ञान मान मा प्रपंच वासुदेव सर्वम इति सब महात्मा। अरे ज्ञानी बनो तो कैसे? जो भी ज्ञानी जन्म जन्मांतर के बाद में मुझको समझता है कि मैं वासुदेव, इस जगत का आदि अंत ही मैं ही हूँ, इसलिए हमारे प्रति वो सब समय लगा रहता है, ऐसा ज्ञानी। और जिसमें भक्ति नहीं है वो ज्ञानी और कर्मी, न कर्म योगी है न भक्ति योगी है। इसलिए भगवान का ये दिया हुआ बुद्धि जो कर्म करेंगे, किंतु कैसा कर्म? भगवान की भी शादी होगी, उससे चित्त शुद्धि होगी, फिर ज्ञान और सत्य प्रकाश होगा, और उसके बाद में सब परा भक्ति होगी, अंत में ब्रह्म भूषा प्रसन्न आत्मा समस्त सर्वे उदेश मत भक्ति लभति। मेरी परामर्श प्रदान करके जीवन का धन्य हो जाता है, और जब तक जीवन है तब तक कुछ न कुछ उसको कर्म तो करना पड़ेगा। भगवत ज्ञान भी रहेगा किंतु वो भगवत संबंधी ज्ञान ये प्राथमिक दिशा में दिया गया
है।
Yeah.
शब्दों गावो समस्त उपनिषद जो गाय है और उसका जो निकल रहा है
वो श्री कृष्ण
कृष्ण निकाल रहे अर्जुन को निमित्त करके जगत के इसलिए यहाँ पर समस्त उपनिषदों का सार ही गीता है इसलिए केवल योग शास्त्र कहेंगे अंकित उसका डेफिनेशन ऐसा किया जा सकता है किंतु उसको केवल योग शास्त्र कहेंगे तो थोड़ा सा अंकित उसका प्रकाश यदि समस्त उपनिषद हैं इसलिए गीतोपनिषद कहा गया केवल योग शास्त्र नहीं इसलिए गीता उपनिषद है उपनिषद माने उपनिषद इस विद्या के द्वारा भगवान के निकट पहुंचा जा सकता है उप माने निकट इसलिए गीता को भी उपनिषद देखिए अच्छा उपनिषद कहते हैं वेद को ही इसलिए वेद और उपनिषद दोनों एक ही इसलिए गीता को वेद ही कहने से कोई हर्ज नहीं बस क्वालिफिकेशन क्लासिफिकेशन किया जाए
enabling दैट इज गोइंग टू अचीव मोक्ष.
गीता में ही कहा गया अर्जुन, ये पहली बात मैंने नहीं कह रहा, मैंने आज से करोड़ वर्ष पहले सूर्यदेव को मैंने कहा और उन्होंने मणि को कहा, उन्होंने इस प्रकार से इन गुरु परंपरा लाइन नहीं करता, इसलिए मैंने कहा पहले सूची के रूप में, पीछे से व्यास देव जी ने इसका लेखन अक्सर देखो, इसलिए किसी ने इसको रखा ऐसा मत, ये
परमानेंट है,
जैसे सच बोलो एक लिखा ये सतयुग में ये बोला गया न द्वापर में न अब बोल रहे हैं, ये नित्य है, किसी के मुख से ये निकलता है उसको हमने लिख दिया सच बोलो, किंतु ये रियल चीज है, नित्य है, सनातन है. ऐसे ही कृष्ण भगवान है, वेद नित्य है, वेद कोई कागज पर लिखी हुई अक्षरात्मक कोई चीज नहीं, वो तो ज्ञान है, उसको अक्षरात्मक रूप में व्यास जी ने या किसी ने भी पीछे से लिखा,
नॉलेज,
इसलिए नॉलेज जो है उसके अंदर में ये नित्य है, वो भगवान के द्वारा उनकी हुई है, वो दूसरे के द्वारा किसी चीज को, और वो ट्रूथ ऐसा है फंडामेंटल सोल, यदि आदमी शरणागत हो जाए तो अपने आप रियलाइज हो जाती है. ये ऐतिहासिककार या ऐसे लोग जो हैं वो इस पर विश्वास नहीं करते, भगवान पर विश्वास नहीं करते, आत्मा पर विश्वास नहीं करते, यही गड़बड़ी है. यदि विज्ञान कुछ दिनों के बाद में उन्नत हो जाए तो इसलिए समझेंगे कि हाँ बस इसका एक ही उपाय है, यदि उनको शरणागत हो जाए आज ही आप जाएंगे, अपनी बुद्धि से आप नहीं जान, अपनी बुद्धि से तो ये भी नहीं जान सकते ये तुम्हारे पिताजी हैं, कैसे प्रमाण करो आप तो कीजिए जैसे ये आपके पिता हैं. हैव यू सीन, हैव यू रियलाइज, आर यू हैव मनी ट्रस्टेड योर मदर, तुम नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन जो फंडामेंटल ट्रूथ है, समझ रहे हैं मेरी बात, नहीं कोई समझ सकता, वो यदि उनके शरणागत हो जाए, मैया से शरणागत, मैया तुमको कहेगी झूठ नहीं कहेगी, यदि झूठ करती है तो तुमको भगवान हैं हमारे अंदर हैं बाहर हैं भीतर हैं, उनसे यदि प्रार्थना करो कि मैं नहीं समझ रहा हूँ कि आप क्या हैं, फंडामेंटल ट्रूथ क्या है, वेद क्या है, उपनिषद क्या है, असल में ज्ञान क्या है, वो अपने आप रियलाइज करा देगा. एक छोटा सा बच्चा है रो रहा है, मैया समझ जाती है कि ये दूध सूखा है, झट स्तन दे दिया, वो पी लिया. ऐसे ही यदि हम इसके लिए भी उनसे प्रार्थना करें, जैसे आप हैं मैं आपका शरणागत होता हूँ, तदामी बुद्धि योगम, मैं बुद्धि बुद्ध देता हूँ और समझ जाएगा. इसलिए समझना बहुत, एक बहुत बड़ा विद्वान नहीं समझ सकता, एक मूर्ख व्यक्ति भी यदि वो शरणागत होगा तो वो मान ले कि आप हैं जो दो भाई हैं, एक भाई तो खूब बड़े विद्वान हैं और एक भाई मूर्ख है, कुछ पढ़ा लिखा नहीं, किंतु पिता माता जी की सेवा करता है खूब, आपको उधर नहीं देंगे उसको देंगे, बुद्धि पर आपका विकास हो गया और बहुत ही कमाने लगे, रुपये कमाने लगे, जैसा चाहिए तो अपने आप कर लेगा, इसलिए दूसरा जो पिताजी की सेवा करता है उसको देंगे, यद्यपि उसका उसमें बराबर भाग है, पिताजी जैसे भी हो बुद्धि से लगा करके जैसे तैसे उसको कुछ देंगे. ऐसे ही भगवान का, जो भगवान का शरणागत होगा जरूर उसको कुछ देगा.
वही जो है that is abstract. It is just like sugar. You cannot say what is sweet.
Yes.
It's impossible. Nobody can define, nobody can describe. Then what we do, we place by the let put sugar on your tongue. And what you feel, that is aisa bhagwan ke var jab ye chaita mystery hai.
Ye to hamare liye kaha gaya. किंतु जो रियलाइज सोल है उनके लिए यही दोनों में अंतर है, एक बद्ध जीव है एक मुक्त जीव है, एक रियलाइज सोल है और दूसरा है जो कि माया के द्वारा आबद्ध है।
फिजिकल इंटेलेक्चुअल नॉलेज
नहीं, उन नॉलेज से संबंध नहीं रहा, वो आत्मा है। स्पिरिट और ज्ञान एक नहीं, ज्ञान कहते हैं बुद्धि से जो हम विवेचन करते हैं,
स्पिरिट तो परमात्मा
और वो स्पिरिचुअल जो भाव होते हैं वो शरणागति के ऊपर में, भक्ति के ऊपर में, अनकंडीशनल सरेंडर के ऊपर में वो रखता है, वो नित्य है, अभी कवर्ड है। और जिस समय ये कवर्ड खुल जाए, बुद्धि और ज्ञान ये विद्या ये सब हट जाएगा और जो आत्मा का परमात्मा का जो ज्ञान है वो अपने आप रखा है।
तो वी फॉलो अद्वैत और द्वैत
दोनों एक ही है, दो है नहीं, अद्वैत और द्वैत, और द्वैत में द्वैत है ना? नहीं तो फिर हुआ नहीं, इसलिए अद्वैत में दो की मानना पड़ेगा, नहीं यदि मानेंगे तो कुछ नहीं असुविधा है। अद्वैत शब्द कैसे बना, यदि द्वैत है ही नहीं है, दो है ही नहीं, तो बना कैसे?
एक आत्मन और एक परमात्मा,
तो
दूसरे का मेरा, लेकिन दीज आत्मा दे आर वन,
नहीं दो नहीं एक नहीं। कौन कहता है कि परमात्मा कहते, कहने वाला कौन है? तुम कह रहे
हो नहीं, परम आत्मा दैट इज अनदर आत्मा।
मैं समझ गया आपकी बात को, मैं ये पूछता हूँ कि अभी जो मैं परमात्मा को नहीं जान रहा हूँ, वो तो परमात्मा परमात्मा को भूल कैसे गया यदि तुम परमात्मा?
हाँ वही वही बोल रहा है, तो परमात्मा और आत्मा एक है
नहीं है, यही परमात्मा
वही तो होगा
नहीं
तो वही तो होगा।
अच्छा आपकी ये आँख और ये आँख और ये मुख कितने अंग हैं, इसका मिला करके एक है ना ये अलग अलग है?
सब मिला के एक है,
एक है ना वैसे। तो ये आँख वो आँख एक नहीं है, ये आँख वो अंधा कर देने की आँख नहीं अंधी हो,
किसी को नहीं देना ठीक
है ना?
अब किसी को
उसी तरह से ये यूनिवर्स है, यूनिवर्सिटी डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी एक राजा है, एक प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट बन गया, एक बड़ा भारी देश है, उसमें करोड़ों आदमी रहते हैं, करोड़ों उसमें आदमी मंत्री की तरह सब मिला करके एक प्रेसिडेंट हुआ। प्रेसिडेंट एक गोल एक चीज नहीं है किंतु है प्रेसिडेंट। ऐसे ही भगवान एक होते हुए भी उसमें जगत है, जीव है, ये है, हम ब्रह्म नहीं है। नहीं तो यदि ये आया कि मैं ही ब्रह्म हूँ तो तुम अज्ञानी कैसे बना? ब्रह्म को तो सब समय ज्ञान रहता है, तो तुम्हारा ये जो बुद्धि है मन है कौन ठक दिया, तुम जीव कैसे बन गया?
ये तो बोलते हैं हम ब्रह्म
कौन कहता है
ये
कौन कहता है? सानो भाई कौन कहता है? आप कहते हैं
ब्रह्म ही कहते हैं,
ब्रह्म कहता है ना?
हाँ
तुम नहीं कर सकते, तुम तो ये भी नहीं जानते कि ऐसे अभी मर जाएगा कि कब मर जाएगा, इसलिए आप ब्रह्म नहीं कर सकते। कहेगा कौन? ब्रह्म जो कहेगा वो है हम ब्रह्म, इसलिए आप ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म के दास हैं उनके अंत। गीता में कहते हैं ममई वान तो
जीव लोके जीव भूत सनातन,
सनातन है माने जब से भगवान है कृष्ण तब से ये जीव है, जीव अनंत है, ब्रह्म के एक है। नहीं तो हम कहाँ जाए?
तो निश्चित ऑफ दिस जीव है,
हाँ ये बतलाता ये परमेश्वर ये सोचेगा, आप मत सोचो।
नहीं
नहीं आपको स्त्री के पास में जाने की क्या जरूरत है? बेटा नहीं समझो, आप समझिए जिसको जो सोचना है जो मालिक है वो सोचेगा, ये ब्रह्म सोचेगा। जब वी
वांट टू इन्फर
आपको जो अधिकार से बाहर मत जाओ, अधिकार से बाहर नहीं जाना है। इसलिए वेदों में कहा सत्तु लीला कैवल्यम वेदांत, लीला के लिए अब लीला किसको कहते हैं? अब उसमें डिफाइन किया गया निरुक्त में, तब उसको जानने के लिए वेद वेदांग छह वेद हैं, अंग हैं, यह सब पूरा जान करके जीवन भर लगा देंगे तभी नहीं जानेंगे। ब्रह्मा भी हाथ जोड़ करके कहते हैं प्रभु मैं आपको जान नहीं सका, आप बुद्धि दीजिए आपको जान। इसलिए जीवन थोड़ा है, बहुत अल्प है, भगवान की शरणागति मुझे जो भी जनाना होगा वो सब जना दे, बहुत ईजी है, हम लोग उसके लिए चेष्टा नहीं करते। एक चीटी, चीटी के जो ऑर्गन हैं वो कोई विश्व का वैज्ञानिक नहीं बना सकता। हमारे अंदर में बुद्धि को किसने बनाया? मैया ने जन्म दिया, किंतु बुद्धि